ओम शांति। हम सब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, इसलिए बहन जी ने मेरा परिचय कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे देते हैं वैसे ही दिया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में तो ये डिग्रियां विग्रियां की पर जैसा स्थान वैसा प्रभाव पड़ता है। आप कृपया ये मत समझिए कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम डबल लाइट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो जो बहन भाई बाबा के शांतिवन में इस सीजन के लिए पहली बार आए हैं, वो कृपया अपना दायां हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा। आज का हमारा विषय है, क्या विषय है पता है कि नहीं? हाँ, डबल लाइट। तो डबल लाइट का अनुभव तो आपने अभी अभी कर लिया, पहले लाल लाइट थी अब सफेद लाइट हो गई है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ, शुरुआत ही डबल लाइट से हुई है। अब हमको देखना है, ये दोनों शब्द इंग्लिश के हैं, डबल भी और लाइट भी, इसका हिंदी अनुवाद क्या है। तो हिंदी अनुवाद क्या है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश और लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक है। अब हमने देखना है कि हम प्रकाश स्वरूप और हल्के हैं ही और ज्यादा हो जाएं। तो आप देखिए प्रकाश का यहां क्या मतलब है, एक तो ये लाइट है और दूसरा प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान प्रकाश। को जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं वो है ज्ञान प्रकाश, और द्वापर से हम लोग क्या गाते आए हैं कि ज्ञान का सूर्य चमका दे भगवान, नयनहीन को राह दिखाओ, और कहते आए हैं हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका क्या अर्थ निकलता है, एक तो रोशनी प्रकाश ज्ञान का है और दूसरा उसको ले जाने वाला परमात्मा है, और कोई ज्ञान का प्रकाश कर नहीं सकता। अच्छा, तो दूसरा है हल्का लाइट। अब इसका अर्थ भी आत्मा से कनेक्टेड है, क्योंकि शरीर में किसी का वजन 120 किलो हो तो आप घटा के उसका 60 किलो तो नहीं कर सकते ना, पर आप देखते हैं 20 किलो वाला भी 120 वाला भी नाच लेता है, डांस भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है, और 60 वाला भी कर लेता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, हल्कापन। अच्छा, अब बात ये सिद्ध हो गई कि हम ज्ञान के प्रकाश में आए और हल्के बने और हमारे मन नाचे। अब हल्का कैसे बनता है व्यक्ति, तो आप देखेंगे खुशी से हल्का बनता है। जब आप खुश हैं तो आपको कोई प्रकार का बोझ थकावट भारीपना नहीं लगता। तो दो बातें हो गई कि हमें बाबा ने बताया हुआ सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सब कुछ चला जाए तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। तो पहले हम प्रकाश की बात करते हैं, ज्ञान प्रकाश, और ज्ञान प्रकाश कौन सा ज्ञान, परमात्म ज्ञान। तो परमात्म ज्ञान में हमें क्या कुछ मिलता है, हमारा छोटा सा एक महीने का स्टूडेंट भी आपको बता सकता है कि देखो तीनों कालों का ज्ञान है, ये कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी दुनिया में ना मिला है ना मिलेगा, तीनों कालों का मास्टर त्रिकालदर्शी, आगा पीछा तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों को ज्ञान को हिस्ट्री कहते हैं, बेहद की हिस्ट्री, और तीनों लोकों का ज्ञान साकार लोक आकार लोक ज्योग्राफी, कि कौन सा ज्योग्राफी मैंने होता है स्थान, अच्छा फिर और क्या, अपने बारे में ज्ञान, आप सब शरीर हैं या आत्मा है, आपको पता है कि दुनिया में किसी को ये ज्ञान नहीं है। तो अगर ज्ञान की आप लिस्ट बनाएं तो आपको पता है, कहा जाता है कि सारी धरती को स्लेट बना लो, सारे पेड़ों की कलम बना लो, सारे सागर की इंक बना लो, पूरा नहीं होता। लेकिन हमको सार रूप में बाबा ने बताया हुआ है कर्मों का ज्ञान, हम उत्थान में कैसे जाते हैं, पतन में कैसे जाते हैं, उसका कारण क्या है, ये सारा ज्ञान हमारे पास सार रूप में है। तो जिसके पास इतना ज्ञान हो है, उसको प्रकाश अगर ना होगा तो किसको होगा। और हमको कोई दुनिया वाला कोई ज्ञान देने लगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई सूर्य को चिराग दिखा रहा है, हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि मेरे वो बच्चे जो सदा ज्ञान प्रकाश की रोशनी में रहते हैं, सूर्य की तरह रहते हैं, तो उनको क्या है, कौन से वंश में जाएंगे, वो कौन से वंश में जाएंगे, सूर्य वंश में। सूर्य वंश कहाँ होता है, सतयुग में। तो सीधा हो गया कि जो सदा ज्ञान प्रकाश में रहता है, ज्ञान प्रकाश हम सबको है, केवल उसको इमर्ज करके रखना है, उसकी स्मृति में रहना आवश्यक है। किसी के पास लाखों रुपए का धन हो लेकिन उसकी जेब में 10 रुपए ही हो, तो वो सिर्फ 10 रुपए ही उसको जाएगा, कहीं कोई सामान 20 रुपए का खरीद लेगा तो वो कहेंगे जी 10 रुपए से तो काम नहीं चलेगा, कहेगा मैं तो लखपति हूँ, क्या प्रूफ है भाई। इसलिए उसको हमने स्मृति में रखना है, तो स्मृति ही समर्थि देती है। जिस व्यक्ति के पास धन होता है वो साथ में सारा धन लेके नहीं चलता, लेकिन उसको स्मृति रहती है मेरे पास इतना धन है, तो उसका नशा चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिसको निश्चय है कि मेरे पास वो ज्ञान है जिसको लोग ढूंढते फिरते हैं, तो निश्चय वाले को नशा होता है। तो हमारा रूहानी ज्ञान है, रूहानी निश्चय है और रूहानी नशा है। और जो नशे वाला होता है वो क्या होता है, फिर वो तो झूमता रहता है, उसको भारीपन आ ही नहीं सकता। इसलिए सार क्या हुआ कि हमने अपने ज्ञान प्रकाश को, जिसको बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्कर घुमाते रहो, अर्थात उसकी स्मृति में रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे और सदा हल्के रहेंगे। क्योंकि दिखाया है कि विष्णु जी शेष सैया पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्रकाश का सिमरन कर रहे हैं। कोई भी आत्मा ज्ञान प्रकाश का जो ही सिमरन करेगी खुशी में नाचेगी। प्रूफ क्या है कि आप एक जो रोज मुरली सुनते हैं, मुरली में बाबा क्या करता, मैं एक चक्कर लगवा देता है, जैसे छोटे बच्चे को माता पिता प्रेम में बिठा के चक्कर लगवा देते हैं, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि मुरली हमको रिफ्रेश कर देती है। इसलिए ये हो गया ज्ञान प्रकाश। अब हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट हमको डबल लाइट बनाने वाला ही है। पहला सब्जेक्ट ज्ञान का हो गया, ज्ञान को रोशनी कहते हैं, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, दूसरा है योग। अब योग क्या करता है, योग भी हमें हल्के करता है, अर्थात हमारे ऊपर जो इतना पिछले कई जन्मों के युगों के विकर्मों का बोझ है, और बोझ तो नीचे लाता है, और बोझ हटेगा तो हम उड़ेंगे, लाइट हो जाएंगे। तो योग हमें एक ही तरीका है, आप आगे का हिसाब ठीक भी कर लो, पीछे बोझ हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा हुआ योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपके विकर्मों को खत्म करता और आप हल्के होते हो। तो अगर हमने सचमुच लाइट बनना है, हल्के बनना है, तो हमें योगी जीवन अपनाना होगा। अब योगी जीवन का क्या मतलब है कि हम पार्ट टाइम योगी नहीं है कि 6 बजे योग शुरू हुआ, 7 बजे खत्म हो गया। इसका मतलब शुरू होने से पहले हम योगी नहीं थे, खत्म होने के बाद भी योगी नहीं रहे, ऐसा नहीं है। ये तो हमें अभ्यास कराया जाता है, स्मृति दिलाई जाती है। तो अगर हमारा योगी जीवन रहेगा तो भोगी जीवन नहीं होगा, रोगी जीवन नहीं होगा, तो हम हल्के ही हल्के होंगे। लाइट होने का ये तरीका है। तीसरा आ जाओ हमारा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, है ना? अच्छा, दैवी गुणों की धारणा। अब दैवी गुण का अर्थ क्या होता है कि गुण जो होता है वो सुगंधी फैलाता है, जैसे फूलों का सुगंधी आती है। अच्छा, अब उससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जितने हम गुण धारण करते हैं हम उमंग उत्साह में रहते हैं। अब हमारी दादियों का एज देखो, उनकी सेवा देखो, जितने भी भाई बहन उमंग उत्साह में हैं, तो उसके पीछे होगा गुण। गुणों जितने गुण बढ़ते जाएंगे उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, थकावट नहीं होगी, क्योंकि आप क्रोध कर लो आपको थकावट हो जाएगी। और जितने गुण नहीं होंगे तो आलस अलबेलापन होगा। तो आप देखिए, हमें पहला सब्जेक्ट ज्ञान की इतनी जबरदस्त रोशनी मिली, दूसरा सब्जेक्ट योग से हम पीछे के विकर्म भी विनाश किए। ये सारा अंदर का मामला है, तो बाहर का तो है नहीं, जो करेगा उसको फील होगा। और बाबा कहता है ये बुद्धि में रखने की चीज नहीं है, इसको जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करने की चीज है। अगर किसी ने एक बार ये अनुभव कर लिया कि ये चीज मीठी है, अब उसको कोई लाख कहेगा कि ये मीठी नहीं है, वो मानेगा नहीं मानेगा? जैसे हमें हमारा नाम पक्का है, हम रात को सो भी रहे होंगे कोई हमारा नाम पुकारेगा, हम फटाफट कहेंगे है मेरे को कहा, इसलिए अपनी चीज है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ये देता रहा हूं देता रहा हूं देता रहा हूं, अब इसको अपनी चीज बनाओ, वरना फिर देने से आपको थोड़ा ही लाभ होगा, जिस जो सारा अपना लेगा उसको पूरा लाभ होगा। अब किसी को कोई बहुत ताकतवर खुराक देता रहे, अच्छे अच्छे वक्त पर देता रहे, रोज देता रहे, महीनों देता रहे, वर्षों देता रहे, और फिर भी वो कहे कि मैं तो निर्बल हूं, तो क्या मतलब निकला कि उसने उसको ठीक तरह से छोटा थोड़ा थोड़ा करके आत्मसार नहीं किया, पड़ा रहा उसके पास। अच्छा, अब आ जाओ लास्ट सब्जेक्ट पर, वो क्या है, सेवा। और सेवा का तो हर एक को अनुभव है कि सेवा की और खुशी हुई कि नहीं, इसलिए सारे लोग ज्यादा सेवा के सब्जेक्ट को ही प्रैक्टिकल में लाते हैं। किसी को कोई सेवा दे दो, आराम से बैठा है, उसको इतनी खुशी आ जाएगी, जान भी आ जाएगी, चलने भी लग जाएगा, उसको अच्छा बस कर, उसका दिल नहीं करेगा बस करने को। जैसे कोई नाटक देख रहा हो तो देना, क्योंकि सेवा में देना है और देने में खुशी है और लेने में बोझ है। तो इसलिए भगवान ने हमको चारों ही सब्जेक्ट इसलिए दिए हैं, डबल लाइट बनने के लिए। अब जिसके पास अगर अकेला भी कोई सब्जेक्ट ले लो चारों में से, तो भी आपको डबल लाइट बना देगा, क्योंकि आत्मा है ही लाइट स्वरूप। ना सिर्फ उसका स्वरूप लाइट है बल्कि वो चैतन्य है, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। कहा जाता है साइंस में, साइंस की शक्ति से शांति की शक्ति बहुत पावरफुल है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। साइंस की शक्ति में लाइट की स्पीड को सबसे ज्यादा तेज गिना जाता है, अब बाबा कहता है तुम्हारे तो मन का संकल्प उससे लाखों गुना तेज है। अगर नापा जाए तो सूर्य से लाइट को धरती पर आने के लिए गिनते हैं इतना समय लगता है, और आप सूर्य का सोचो आपको फटाफट हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि सचमुच हम सूर्य के प्रकाश में रहें। तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि सूर्य में कलाएं नहीं होती। सूर्य जग उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा में कलाएं होती है ना। तो अब चंद्रमा में कलाएं होती हैं तो फिर क्या होगा कि अगर हम अपने मूड को ही देख लें, बाबा ने कहा तुम प्रकाश स्वरूप हो है? अब पता आपको जब ब्रह्मा बाबा में फर्स्ट टाइम शिव बाबा आए थे तो क्या बोला था, प्रकाश स्वरूपम शिवो हम। परमात्मा तो सदा ही प्रकाश स्वरूप है, सदा ही शिव है, सदा ही ज्योति स्वरूप है। तो अगर हम हर वक्त एक ही मूड में रहेंगे तो सूर्यवंशी, क्योंकि उसमें तो कलाएं हैं ही नहीं, जिसको कहते हैं एक रस। और अगर हमारा मूड बदलता रहेगा, सुबह जाओ बड़े खुश हैं, दोपहर को थोड़े कम खुश हैं, शाम को कोई और तरह की सूरत है, तो फिर कलाएं आ गई ना, कलाएं कम हो गई, कलाएं ज्यादा हो गई, तो कलाओं कलाओं वाला क्या करेगा चंद्रवंशी। तो इसलिए बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण। लेकिन चंद्रमा भी जब फुल होता है तो आप देख लो, आप सड़क पे जा रहे होंगे, आपका ध्यान ना चाहते हुए भी ऊपर जाएगा, फुल मून है ना। इसलिए बाबा कहता है अगर आप यही हम ध्यान रखें, 16 कला संपूर्ण बनना है। लेकिन जो चंद्रमा वगैरह होता है उसमें लाइट सूर्य की होती है, तो इसलिए बाबा कहता है अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे तो फिर भी चंद्रवंशी, 16 कला संपूर्ण हो भी गए तो चंद्र चांद चंद्रमा की कलाएं हैं वो। इसलिए जो दूसरे को लाइट देता है, एक होता है सो कल्याणकारी, सो परिवर्तक, तो बाबा के लिए तो फर्स्ट स्टेज है सो परिवर्तन। लेकिन विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक का मतलब क्या हुआ कि दूसरे को लाइट देने वाला। तो पहला स्टेप तो यह है कि हमको लेनी है, अगर हमारे पास ही नहीं है दूसरे को क्या देंगे, फिर कितनी लाइट। तो बाबा ने बताया हुआ है कि तुम पहले तो स्वयं को लाइट भरो, फिर लाइट हाउस बनो, फिर सर्च लाइट बनो, बहुत बताया कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों को लाइट दे सके। अच्छा, तो अब आप देखिए कि हम साकार लोक में डबल लाइट रहने के ये तरीके। एक बात खास ध्यान में रखने की है, वो क्या कि डबल लाइट हम केवल केवल और केवल संगम युग पर बन सकते हैं। ये खास नोट, क्योंकि संगम युग पर हम ब्राह्मण हैं, संगम युग का ही महत्व है। ना तो देवता डबल लाइट बन सकते हैं, ना कोई और डबल लाइट बन सकता है, हालांकि वो पावन है। लेकिन ये जो आत्मिक स्वरूप है हमारा, जिसमें हमें तीनों कालों का पता है, देवताओं को पता है क्या तीनों कालों का, देवताएं सुख में रहते हैं, हम अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि तुमको वो इस समय पर प्राप्तियां हैं जो ना किसी को थी, ना किसी को हैं, ना किसी को होंगी। इसलिए संगम युग को हमने याद रखना, और इन सब से हमें क्या मिलता है, अति इंद्रिय सुख। अब सुख से तो व्यक्ति खुश रहता है, हल्का रहता है, अति इंद्रिय। अति इंद्रिय क्या क्या मतलब कि उसके लिए आपको किसी शरीर की इंद्रिय की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका कि वास्तव में आत्मा बिना शरीर के केवल सूक्ष्म शरीर धारण करके सारी अनुभूतियां कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आप सूक्ष्म शरीर धारण करके, स्थूल शरीर में तो आपको दूध पीना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन घट गई, विटामिन बढ़ गए, पता नहीं क्या, अच्छा ट्रेवल करना होगा तो आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, लेकिन सबसे बेस्ट डबल लाइट स्वरूप कैसे हम बना सकते हैं? जब हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनुभूति करेंगे, जैसे आपको सपना आता है, अब सपने में आपका स्थूल शरीर तो पड़ा है, लेकिन सपने में आपको एग्जैक्ट अनुभूति होती है कि नहीं होती है? कैसे गिर रहे हैं तो फील होगा मैं गिर रहा हूं, कोई भय की बात आ जाएगी तो भयभीत हो जाऊंगा, कोई खुशी की आ जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा को केवल अनुभूति करने के लिए आत्मा स्वरूप में नहीं कर सकती, लेकिन सूक्ष्म शरीर द्वारा सब कुछ कर सकती है। इसलिए बाबा कहता है कि यहां डबल लाइट बनने के लिए, यद्यपि हमको सब बातें पता है, जो मैं आपको सुना रहा हूं कोई नई बात तो नहीं सुना रहा हूं, बाबा रोज उसको रिपीट कराते हैं, लेकिन आप साकार लोक में रहकर ये सोचे कि मैं डबल लाइट बन जाऊं पूरा, आप बन सकते हैं? अगर आप पक्के बन गए तो आप इस शरीर में नहीं रह सकते। बाबा ने बताया हुआ है कि जब आप संपन्न बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे, कर्मातीत बन जाओगे, तो इस पुराने कलयुगी पतित शरीर में पतित दुनिया में रह ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, दो तीन दिन पहले मुरली आई थी कि शिव बाबा को भी गम आता है, रन जाता है, होली ऑफ दी होली को भी गम खाना पड़ता है। तो मेरे से एक भाई ने फोन करके पूछा इसका क्या मतलब हुआ, भगवान भी गम खाता है? तो मैंने कहा अगर वो रहम कर सकता है कि बच्चों पर मुझे रहम आता है तो गम क्यों नहीं खा सकता? उसका भाव ये नहीं कि भगवान को कोई अफसोस हो जाता है, लेकिन बाबा ने कहा कि देखो होलीएस्ट ऑफ दी होली और उसे मिलने कौन आ रहा है मजबूरी से, कोई सरकार का अफसर आ रहा है, कोई पुलिस वाला आ रहा है। फिर बाबा ने कहा वो दिन आएगा जिस दिन ये कायदा सख्त हो जाएगा, ये मेरे से नहीं मिल सकेंगे। तो हम सोचते थे शायद कोई लॉ बनेगा इसको अंदर नहीं आने देना, लेकिन बाबा ने क्या किया, सूक्ष्म हो गया। अब सूक्ष्म वतन में कौन सा पुलिस वाला, कौन सा खराब व्यक्ति है, विकारी व्यक्ति बाबा के पास छू ही नहीं सकता। ब्राह्मणों में भी अगर किसी में कोई डिफेक्ट है सूक्ष्म वतन में जा ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है बिफोर आपको परम धाम में जाने से पहले, आपको सतयुग में प्राप्त स्वरूप बनने से पहले सूक्ष्म फरिश्ता बनना है। इसलिए जैसा देश वैसा वेश। तो नेचुरली आप सूक्ष्म वतन में जाएंगे या सूक्ष्म वतन की स्मृति रखेंगे तो शरीर नहीं है वहां। अब क्या होगा तो फरिश्ता बन गए। अब फरिश्ता तो वैसे ही डबल लाइट होता है, क्योंकि उसका शरीर भी लाइट का बना हुआ और आत्मा तो उसकी है ही लाइट, और उस लोक में हल्का ही जा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस धरती पर सदा खुश रहने का और सदा ज्ञान मुहूर्त रहने का, सदा अपने लाइट रूप में रहने का एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म स्वरूप में रहें। सूक्ष्म लोक में तो नहीं जा सकते, अपने सुख को सूक्ष्म लोक की स्मृति में लाएं। जैसे आप यहां बैठे हैं आराम कुर्सी पर, आप जो स्मृति लाओगे आपको वैसा ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। मान लो आप किसी दूसरे गांव से आए हैं, बैठे कॉन्फ्रेंस हॉल मधुबन में है, लेकिन आपका संकल्प उस गांव में चला गया तो क्या होगा, आपको कौन सी अनुभव हो रहा होगा वहां का? क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। अगर आप कोई खुशी की चीज सोच रहे होगे तो आपको खुशी का अनुभव हो रहा होगा। तभी बाबा कहता है कि कोई भी जिस संस्कार को हमने धारण करना है उस संस्कार को इमर्ज करो, उस संस्कार से संबंधित संकल्प करो, उस संस्कार से संबंधित बोलो, उस संसार के संबंधित संस्कार के कर्म करो, उसी से संबंधित संबंध संपर्क में आओ। वरना अगर आपने कुछ दूसरा किया तो फिर और संस्कार भर जाएगा, अब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी किसी अज्ञानी के घर चला जाए, चाहे वो लौकिक रिश्तेदारी हो, तो जितना टाइम आप वहां रहेंगे आपको क्या फील होगा? हमारी दुनिया ही न्यारी है, कमल की तरह है, चीजें ही और तरह की हैं। वो बेचारा अपने लौकिक तरीके से आपको स्नेह देने की कोशिश करेगा, खुश करने, आपको हंसी आएगी अंदर से कि भाई जैसे मक्खन जो होता है वो एक बार छाछ से निकल गया तो अलग हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हम सूक्ष्म लोक में जाएंगे तो डबल लाइट आप पे होंगे, तो उसका प्रभाव फिर यहां पड़ेगा। तब करके बाबा कहता है कि फरिश्ता बन के कर्म में आओगे तो आपको हल्का रहेगा, क्योंकि नीचे की ऊपर ऊपर भेजोगे तो वापस आ जाएगी, ऊपर की चीज नीचे आएगी तो उसने वापस ऊपर ही जाना। इसलिए आसान अभ्यास बाबा ने ये बताया, और उसके अंदर एक ही चीज काम करती है जिसका नाम है स्नेह। अगर कोई सोचे ऐसे ऊपर नीचे सूक्ष्म भी है, वो नहीं होगा। स्नेह का पेट्रोल है जो हमको एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन कर देता। चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आपको उससे प्राप्ति हो सकती है। रोज हम अपने मोबाइल को पूरा खाली भी नहीं होने देते कि पूरा जीरो आ जाए, जरा सा नीचे आएगा हम कहेंगे इसको चार्ज कर लो। हम देखना चाहते हैं कि हमारा मोबाइल सदा ही चार्ज रहे, क्योंकि खुशी होती है। तो अपना ये वाला मोबाइल, ये भी तो जितना चार्ज रहेगा खुशी होगी कि भी अब हमें कोई चिंता नहीं है, ये चलेगा। अगर कम चार्ज हो, कहीं दूर आपने जाना हो, आपको लगेगा ऐसा ना हो कि मेरा मोबाइल चलना बंद हो जाए। इसी प्रकार से तो अगर हम भरपूर रहते हैं तो हमको वैसी खुशी रहती है। तब करके बाबा ने कहा है निश्चय, ठीक है, निश्चिंत और निश्चित। तो ये जो बाबा ने हमको हमारे जन्म सिद्ध अधिकार दिए हुए हैं, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब किसी को गारंटी हो कि मुझे सफलता मिलनी मिलनी है, और भगवान की गारंटी हो, उसको कभी शक पड़ सकता कि ये काम मैं नहीं कर सकता? तो भगवान कहता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना संगम पर ब्राह्मणों का अधिकार है, हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। फिर बाबा और कहता है कि अनेक बार तुमने सफलता पाई, आज नहीं पा रहे हो, ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि होगी कि नहीं होगी। और फिर बाबा कहता है मेरा दिया हुआ वरदान है सदा विजयी। अब जिसको सदा विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऊपर से ज्ञान है कि कल पाद रिपीट होता है, हम ब्राह्मणों को ही भगवान मिला हुआ है, और उसको उस व्यक्ति को क्या होगा? मौज होगी, मस्ती होगी, नशा होगा या कुछ और होगा। लेकिन हम जब स्मृति छोड़ देते हैं, हम अपने आप को बेहद से त्रिकालदर्शी मास्टर से, मास्टर त्रिलोकीनाथ से, भगवान के बच्चे से धरती पर ले आते हैं, तो फिर क्या होता है? हम लिमिट में आ जाते हैं कि मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो। तो भगवान ने कहा हुआ है ये मेरा शब्द आपको लाइट नहीं होने देता, हल्का नहीं होने देता। इसलिए जब मैं और मेरा कहो उसका अर्थ चेंज कर लो। हमको पता है क्या अर्थ कहा होगा बाबा ने, हैं? मेरा कौन? मेरा बाबा। और मैं कौन? आत्मा। फर्क पड़ गया, आत्मा भी हल्की, बाबा तो है ही, तो इसलिए हल्के हो जाएंगे। जो ही आपने कहा मेरा रुमाल गुम हो गया तो बस सारी दुनिया की बादशाही एक तरफ, सारा ज्ञान एक तरफ, वो रुमाल गुम हो गया, कहाँ गया रुमाल? अब बताइए, कॉन्शियसनेस में फर्क हो गया ना। इसलिए बाबा कहता है बेहद और सदा, दो शब्द अपने साथ लगाओ। हम सब स्नेही हैं, बाबा कहते हैं सदा स्नेही हो, है ना, हर चीज के साथ सदा। हम सब भगवान से रस लेते हैं, एक रस है। बाबा कहते हैं सदा एक रस हो। तो अब सदा वो चीज रह सकती है जो आसान हो, कोई भी मुश्किल चीज सदा नहीं रह सकती। इसलिए भगवान कहता अपनी नेचर बनाओ, नेचुरल नेचर होगी तो तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है उसको याद करने की, उसको अवस्था को लाने की, आपकी नेचुरल नेचर है। जैसे माया की नेचुरल नेचर बन गई है तो नहीं हमारी, अब कोई सिगरेट पीता है उसको बेचारे को सिगरेट छोड़ना मुश्किल होता है, समझता है मेरी तो प्राण निकल जाएंगे, पर उसकी नेचुरल नेचर तो नहीं है। तब बाबा कहता है जिसको तुम बोलते भी हो, मेरा जरा जोर से बोलने का स्वभाव है, ख्याल नहीं करना मेरी नेचर है। अच्छा हम पैर कह देते हैं माफ करना, मेरे मुंह से ये शब्द निकल जाता है, मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं चाहता था। लेकिन बाबा कहता है गौर से सोचो कि ये आपकी ओरिजिनल नेचर है या आपकी बीच के पीरियड की नेचर है, अक्वायर्ड नेचर है। ओरिजिनल तो हमारी देवता है, ओरिजिनल तो हमारी सर्वगुण संपन्न है। इसलिए आप देखोगे सतयुग में शक्तियों का नाम नहीं है, हमारी क्वालिफिकेशन में ये सतयुग में नहीं होगा मास्टर सर्वशक्तिवान सहन शक्ति फलानी ना। वो शक्तियां गुणों में, देवताओं के क्वालिफिकेशन में गुण है, सर्वगुण संपन्न, क्योंकि शक्तियां ही गुण में परिवर्तित हो जाती है। हर शक्ति आखिरकार अपने गुण में परिवर्तित होती है। अगर आम का पेड़ है उसके अंदर जो भी ताकत है वो फाइनली आम के फल के स्वरूप में, फल स्वरूप। इसी प्रकार से मान लो बिजली की शक्ति है होगी, लेकिन इस बल्ब में आ गई तो ये उसका फल स्वरूप हो गया, नहीं तो बिजली पड़ी रहे हमारे किस काम की। तो इसलिए फाइनल हमारा गुण स्वरूप है। तो बाबा कहता है अगर आप कहीं भी शक्ति लगाते हो और आपको फील होता है मुझे बहुत सहन करना पड़ रहा है, तुमको क्या पता ये व्यक्ति तो मुझे ये चला जाए दुनिया से तो मेरा जीवन सुखी हो जाए, अब बताओ। तब बाबा कहता है कि ये शक्तियों का प्रयोग भी एक प्रकार की मेहनत है। मौज वाला को, अच्छा मौज वाले को मेहनत महसूस नहीं होगी, आप मेहनत भी कर रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप उसमें गुण स्वरूप बन के कर रहे हैं, हल्के होकर कर रहे हैं। किसी कार को धक्का लगाओ, कितने लोग चाहिए, और उस कार का इंजन स्टार्ट करके धक्का लगाओ, सिर्फ कितने लोग चाहिए, फर्क पड़ गया, थोड़े चाहिए सिर्फ इंजन स्टार्ट करने से, कार वही है वजन वही है। ऐसे ही हमारे अंदर का अगर इंजन स्टार्ट हो जाए तो हम हल्के होके हो जाएंगे। तब बाबा कहता है कि किसी भी कार्य करने से पहले अपनी सीट पर सेट हो। इसका मतलब क्या है, सीट का मतलब ये कुर्सी नहीं है, अर्थात अपनी ऊंची स्थिति की सीट, जो मैंने तुम्हें ऊंची स्टेज दी हुई है, जो तुम्हारे को हथियार दिए हुए हैं सूक्ष्म, उस पर सेट होके करोगे ना आपको थकावट होगी, ना आपको ख्याल आएगा दुनिया का पता ही नहीं, ना आपको किसी से फीलिंग आएगी, क्योंकि आप तो और काम में लगे हो, जैसे कोई मस्त व्यक्ति होता है मस्त को इधर उधर का पता ही नहीं लगता, वो हल्की स्टेज है। इसलिए अब सूक्ष्म लोक में रहकर यहां करो। तीसरा बात है निराकार लोक। अब निराकार लोक में भी क्या हम डबल लाइट हैं? निराकार लोक में क्या हम डबल लाइट हैं? क्या ख्याल है कि वहां तो हम बस आत्मा बन गए, फाइनल बन गए, कंप्लीट बन गए, अपनी अनादि स्थिति में स्थित हो गए, आत्मा बैठ गई, आत्मा को ये भी नहीं पता मेरे साथ और कौन सी आत्मा बैठी है, सूक्ष्म शरीर ही नहीं है, संस्कार ही इमर्ज नहीं है, ऐसा है क्या? तो जब बाबा ने कहा डबल लाइट, हर जगह डबल लाइट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हर चीज हमारी डबल है, डबल ताजधारी, डबल तखतधारी, डबल तिलकधारी, हर चीज डबल है ही प्रवृत्ति मारक। तो आप गौर से देखेंगे तो बाबा कहते हैं, अभी भी ताजा ताजा भी कहा है कि आकाश के अंदर बहुत से सितारे होते हैं, लेकिन कई सितारे ज्यादा चमकते हैं। वो कैसे? तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम परम धाम में भी हम जाएंगे तो परम धाम में हमारा स्थान कहाँ है? परम धाम में हमारा स्थान कहाँ है? शिव बाबा के पास सबसे पहले ब्राह्मण देवता है, क्षत्रिय भी उसके बाद है, उसके बाद सारे। इसलिए जब शिव बाबा है प्रकाश स्वरूप तो बाबा कहते हैं, बल्कि हमें अभी भी अभ्यास करने को कहते हैं, तुम परम धाम में जाकर, सिर्फ आत्मा नहीं, परम धाम में क्यों जाएं हम अगर कुछ मिलता ही ना हो? तो परम धाम में जैसे हम स्मृति करके शिव बाबा से शक्ति लेते हैं कि नहीं लेते? निराकार स्वरूप में सबसे ज्यादा शक्ति मिलती। इसी प्रकार से जब हम आत्मिक रूप में भी फाइनल जाएंगे वहां रहने के लिए, हालांकि हम सबसे कम टाइम रहते हैं, वहां भी बाबा कहते हैं जो समीप की आत्माएं होंगी वो मेरे प्रकाश में रहेंगे। तो वो इसीलिए वो सितारे ज्यादा चमकते हैं, बाबा के तो सारे बच्चे हैं। इसलिए भगवान कहता है कि हम वहां भी डबल लाइट है, सूक्ष्म लोक में भी डबल लाइट है और यहां भी डबल लाइट है। केवल क्या करना है आप सोचो, क्या आप में से किसी को भी डबल लाइट का अनुभव हुआ ही नहीं क्या कभी सारी लाइफ में? या हुआ है ना? एक बहन बाबा के पास गई, अव्यक्त बाबा आते थे, बाबा मैं योग लगाती हूँ, मेरा योग आप तक पहुंचता है, पूछ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? उसको लगा रही है लेकिन उसको कोई पक्का फील नहीं होता कि मेरा योग बाबा तक पहुंचता है। अच्छा, तो बाबा ने कहा, तुम जितना भी योग लगाती हो कभी कभी तुम्हें महसूस होता है कि बाबा से मेरा कनेक्शन जुड़ गया, मुझे शक्ति मिली? कहते हैं वो तो होता है। तो बाबा कहते हैं अगर कभी कभी होता है तो सदा भी हो सकता। इसी प्रकार से हम डबल लाइट फील करते हैं। आप देखिए, कोई विशेष हम भट्टी करते हैं या विशेष हमको कोई सेवा का चांस मिल जाता है। मान लो बाबा आए हुए हैं और किसी आत्मा को बुलाकर विशेष इधर आओ बच्चा, और उसको आकर के बाबा सेव दे देते हैं, तो उस समय जो उस आत्मा की अवस्था होती है कैसी होती है? अरे बाबा ने मुझे इतनी सारी आत्माओं के आगे, उसके दिल में ऐसा उसके शरीर फील ही नहीं होता, और सीढ़ी उतरते समय लगता ही नहीं कि मैंने कोई सीढ़ी उतरी है, मैं अपने आसपास कौन है, तो हो गया अति इंद्रिय सुख। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में संगम पर हमें इंद्रियों का सुख लेना ही नहीं चाहिए, इंद्रिय का सुख और अति इंद्रिय सुख का कोई मुकाबला ही नहीं है। और क्या कहा हुआ बाबा ने, अति इंद्रिय सुख पूछना हो किससे कहा हुआ है? गोप गोपियां कहने से तो कोई दूसरे लिखते हैं, हाँ हमसे पूछो, बाबा के बच्चों से पूछो। इसलिए अगर हम उस अति इंद्रिय सुख का कभी कभी रस ले सकते हैं तो क्या सदा नहीं ले सकते? और सदा लेंगे तो हम डबल लाइट हैं। जिस वक्त भी हम अति इंद्रिय सुख में हैं तो हम डबल लाइट हैं। अब हमारे हाथ में है कि हम उससे नीचे आकर बहुत ज्यादा, जैसे कोई होता ना, हे भगवान तुम्हारा प्रकाश मेरे से सहा नहीं जाता, है ना? वो तो भय से कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि दुखी आत्माओं को, दुख में रहने वाली आत्माओं को, दुख की आदि आत्माओं को दुख में ही मजा आने लग जाता है। आप देखेंगे गीत बजते हैं ना, नाम उसका गीत है, कई गीत बड़े गम के गीत होते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति गमगीन है उसको उस गम के गीत में वो रस आता है, उसको खुशी का गीत बजाओ उसको पता ही नहीं लगता ये क्या चीज है। अच्छा, आपका कोई फेस्टिवल आएगा, मान लो दिवाली आ गई, अच्छा सब लोग खुश हैं, अरे भाई दिवाली आ गई अपने अपने तरीके से, उस व्यक्ति को दिवाली के ऐसे लगता है क्या कर रहे हैं लोग है? और उसको वहां से भाग के कोने में जाके अकेला रहने में खुशी हो, क्योंकि आदि है। अब हम दो युगों के आदि हैं, क्या इंद्रियों के सुख, क्या इंद्रियों के दुख लेने के। अब इंद्रियों के दुख लेने वाले को अगर अल्पकालिक इंद्रियों का सुख मिल जाए तो क्या करेगा, वो तो उसको पकड़ेगा कि वाह। लेकिन बाबा कहते हैं ये टेम्परेरी है। मुरली आई है कि नहीं, वो लोग दीपक बुझे हुए दीपक को जगाते हैं और फिर बुझा देते हैं। क्या वंडरफुल बात है, हमने तो कभी सोचा नहीं, हम भी यही करते रहे, बुझे हुए दीपक को जलाया फिर बुझा दिया। और बाबा कहते हैं तुम जगे हुए दीपकों की मैं दिवाली मनाता हूँ, जगे ही रहते, फर्क हो गया। अर्थात अल्पकालिक और सदाकालिक। तो अल्पकालिक, जब आप बॉडी कॉन्शियस होंगे तो आपको अल्पकालिक चीजें दिखेंगी, उसमें अच्छा भी लगेगा, खुशी भी होगी, मैंने केक खा लिया, अल्पकालिक है। हम बॉडी कॉन्शियस हैं, अगर हम आत्माभिमानी होकर करेंगे तो सदाकालिक है, क्योंकि आत्मा है ही अविनाशी। अब हम आप देख रहे हैं, बाबा ने कहा ये सब आत्माएं बैठी हमारे दिल में ही है, ये आत्माएं हम भी आत्मा है। अच्छा, उसका जरा और गहरा करके ध्यान में रखे कि मुझे आत्मा ही आत्मा देखना है, आपको ज्यादा मजा आएगा। इसलिए सदाकालिक। अब जैसे नया साल आ रहा है, मान लो दो तीन दिन के बाद दुनिया वालों के लिए नया साल, हमारे लिए क्या है नया साल या नया युग, नई जीवन। तो बाबा कहता है वो एक दिन मनाएंगे, बस उसके बाद गया। और हम तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो नया युग आ रहा है, नई दुनिया आ रही है, नया जीवन आ रहा है। और हर व्यक्ति को नई चीज अच्छी लगती है। अगर आप देखेंगे नई चीज कोई घटिया भी हो लेकिन नई है तो इसलिए लोग ले लेते, जैसे फैशन होता है, कुछ नया फैशन चल जाए तो लोग उसको समझते कुछ नया है तो ले लेते हैं। अब बाबा कहते हैं हमारे लिए तो रोज ही नया साल है, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है तो कहाँ ध्यान जाता है। अब उसके लिए क्या है, रोज बाबा कहते हैं तुम्हारे पुराने संस्कार, इसको विदाई दो, पुराने संस्कार को यूज ना करो। और क्योंकि जो कहते हैं मेरा पुराना है, पुराना नहीं, असली पुराना तो वो वाला है, लेकिन जिसको तुम समझते हो उसको छुट्टी दो। तो जब कोई पुरानी चीज को छोड़ता है तो उसको नई चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए नवीनता कहता है। ब्रह्मा बाबा का एक खास संस्कार था, ब्रह्मा बाबा नवीनता ही पसंद करते थे, यहां तक कि डुप्लीकेट किसी को करे वो भी उस पसंद नहीं करते थे, सिर्फ फॉलो फादर करते थे। इसलिए अब नया साल आ रहा है तो नए साल में हम क्या करते हैं, पुरानी चीज को विदाई देते हैं। तो बाबा कहता है कम से कम पुराने संस्कार जो हमको तंग करते हैं, जैसे कोई कहता है ना भाई तुम्हें नई चीज दे देते हैं पुरानी को फेंक दो, हम खुशी से फेंक देते हैं। अब हम सबको कोई कहे कि तुमको सबको बहुत बढ़िया शॉल जो इंडिया में सबसे बेस्ट है बाबा तुमको गिफ्ट दे रहा है, तुम अपनी पुरानी शॉलें उतार दो, तो हम क्या करेंगे फटाफट। अच्छा, नवीनता है। लेकिन ये जो नए संस्कार हैं उसके लिए बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कार अगर आप छोड़ोगे, कि पुराने को विदाई देते हैं, तो वो संस्कार आपको कितने अगली बारी कब आएगा। आपने एक पुरानी चीज को छोड़ा, वो अगली बारी कितने साल बाद आएगी, 5000 साल बाद आएगी। अच्छा, तो समय उसको 5000 साल के लिए विदाई दे रहा है और हम क्या करते हैं 15-20 दिन पर वापस ले आते हैं। अब देखो समय को भी अकल है, ये मुसीबत की चीज है, इसके पास 5000 साल बाद आनी है। हमको ज्ञान भी है कि ये चीज अपनी आनी पा, लेकिन हम उसको खुद बुला लेते हैं। तो क्या हुआ कि पुराने को छोड़कर फिर धारण कर लिया, आदत है पुराने की। इसलिए बाबा ने कहा कि नए साल पर लोग गिफ्ट देते हैं, उसका भी कोई मतलब होता है, गिफ्ट में होती नवीनता। तो आप बच्चों को अगर पुराना छोड़ना है तो नया धारण करना है, तो ये भारत के अंदर तो रस्म है कि जो चीज आपको छोड़नी है उसका दान दो, है ना। तो गिफ्ट देते हैं तो हम कौन सी गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे तो बाबा कहता है रोज ही दो, परंतु नए साल में हमको जो बाबा ने चीजें दी हुई हैं उसका गिफ्ट देना है। बाबा ने हमको गुण दिए हुए हैं, शक्तियां दी हुई हैं। अच्छा, तो पुराने में क्या छोड़ना है हमको चेक करना है, मेरे अंदर पुराना क्या है। तो आप देखेंगे किसी ना किसी के साथ ईर्ष्या, सूक्ष्म ईर्ष्या होगी, किसी ना किसी के लिए ये होगा, ये सारा परिवार के लिए होता है। बाबा में सबको निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है कि इसको क्यों बना दिया, इसको क्या बुद्धि है, अच्छा ये ऐसा करता है, फिर दिमाग चलेगा इसको, इसने ऐसे ऐसे झूठ बोल के अपना किया है इसलिए इसको बना दिया। अच्छा, और मान शान भाई तुमको सेवा की नेकी कर दरिया में डाल, नहीं कोई पूछे तो सही। अच्छा, ऐसी युक्ति करेंगे तो बाबा ने बता रखा है तीन प्रकार के होते हैं, एक सच्चे, एक स्वार्थ वाले और एक मौके पर, है ना। मान लो आप स्नेही हैं तो एक सच्चे दिल वाले, एक स्वार्थ के साथ दिल वाले और एक मुसीबत के वक्त अभी भगवान को याद करना ही, आप तो बाबा उस वक्त बिल्कुल सच्चे हो जाएंगे, मुसीबत गई बाबा भी गया याद भी गई, तो उसको सारा पता है। वो कहते तुम्हारी मूर्तियों की पूजा भी इसी तरह ही होती है, किसी की सदा होगी, किसी की बीच बीच में होगी और किसी की कभी कभी। इसलिए हमको गौर से कि अगर हमने मधुबन में आए हैं परिवर्तन के लिए, गौर से हमको पुराने संस्कार अपने अंदर देख के, सूक्ष्म में अभिमान तो नहीं है, यहां तक होता है कि मुझे कोई अभिमान नहीं, ये भी अभिमान होता कई को, मुझे कोई अभिमान नहीं। अब गौर से देखो कि बिना अभिमान के इस दुनिया में आप अभिमान छोड़ दोगे, इस दुनिया में रहोगे। बाबा ने व्यक्त होने समय जो तीन शब्द कहे थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इस दुनिया में साकार लोक में तुमको निरहंकारी बनना है। निरहंकारी बनोगे तभी तुम फरिश्ता बनोगे। तो जिस जो देह साथ जुड़ी हुई है उसका भान और अंदर से अपनी विशेषताओं का अभिमान छोड़ना आसान चीज है, लेकिन बाबा कहता उसको कन्वर्ट करो, मैं निमित हूं। तो ये सारी चीजें हमको चेक करनी पड़ेगी। हम खाली दूसरों की तरफ देखते रहे, दूसरे को ऐसा होना चाहिए जैसे बोल है। अब जब कोई हमसे ज्यादा बोलता है तो हम क्या कहते हैं कि देखो भाई थोड़े में बात करो, और जब हम बात करते हैं तो हम ज्यादा बात करते हैं और समझते हैं मैं उसको समझा रहा हूं। अब बाबा कहते तुम्हारे लिए वो लागू नहीं हुआ क्या, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, तुम विस्तार में करोगे तो जो बताना चाहते हो वो भी गुम हो जाएगा। तो सार ये है कि हमें नए में ये ध्यान रखना है, और डबल लाइट रहने के लिए हमको बाबा ने बहुत मौके दिए हुए हैं, और उन सब मौकों का हमको फायदा लेना है। हर वक्त हम डबल लाइट रह सकते अपनी स्मृति को इमर्ज करेंगे तो। ओम शांति। Thank you.
गम भर लेती है मुस्कान आपकी बाबा, जन्मों के गम भर लेती है जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है मुस्कान आपकी बाबा, जन्मों के गम हर लेती है मुस्कान आपकी बाबा।
Thank you.